कह लगे तई प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर विखे पाव लयो। साहब गुरु कलगी धर जी की आमद 22 दिसंबर उस वेले 22 दिसंबर सन 1666 नु होई है। ते ताई ता हरि राम गुप्ता ने द हिस्ट्री ऑफ सिख गुरुज ओदे विचो लिखे है कि गुरु कलगी वालिया तेरे वर्गा जिगरा किदा होना है। 22 दिसंबर 1666 नु तेरा जन्मदिन सी, 22 दिसंबर सन 1704 नु तेरे जन्मदिन वाले दिहाड़े तेरे दोवें वड्डे पुत्र शहीद पे हुंदे सन। तेरा 39वां गुरपुरब सी उधर, 39वां जन्मदिन सी। साहिब गुरु कलगीधर जी दी आमद होई ते गुरु देव गुरु तेग बहादुर जी उस वेले ढाके दी धरती ते सन। देखो पिछानी परते पिछानी मुड़े छीने विच मनुखता दा दर्द सांभ के तुरिया गुरु। सारी रात ओ दिन विश्राम नहीं कीता। भाई साहब भाई वीर सिंह कहिंदे ने कि ढाके दी धरती ते चौंकड़ा मार के गुरु तेग बहादुर सच्ची सरकार बैठे रहे। अमृत वेले जदों साहिबजादे दी आमद होई ते मुस्कराए ते नाल दे सिखां ने पुछया, खास करके उतों दा मसंद गुलाकी दास सी, पुछदे ने हे मेरे हजूर सतगुरु कि सारी रात विश्राम तेरियां तू जाने नहीं कीता, सवेरे क्यों जसे हो। कहन लगे गुरु नानक साहब ने जेड़े दसवें जामे च विचरना ते दुष्टां दीआं जड़ां हिलाण वाला अज पटने की धरती ते आ गया। गुरु समर्थ है जे बैठा पंजाब की धरती ते भीखण शाह जिदा असली पिंड सी सियाणा सजदा ते रहिंदा है कुड़ाम सी, जे इहनू पता लगदा पछम नू छड के पूरब नू सिजदे क्या करदा गुरु तेग बहादुर दे दीन दुनी दा साई है। हजूर नू खबर पहुंचदी है ते नाम रखिया जांदा है गोबिंद, जिस तख्त नू अज असीं मनना है ते साडा ओह पवित्र तख्त है। गुरु तेग बहादुर कृपालू सतगुरु मेहर करदे ने। एक हुक्मनामा पटने की संगत नू फिर पिछा लिखदे,
जदों हुक्मनामा लिखदे ने ते शब्द कहिंदे ने गोबिंद जी की बधाई होवे। देखो शब्द की संगत ने पता नहीं किन्ना कु रुपया खर्चा थी। जिस दिन गोबिंद राय आए थे उस हुक्मनामे विचों मिलदा है कि गोबिंद जी के जन्म की बधाई होवे। कह लगे संगत ने जो रुपया ढेला कौड़ी, देखो शब्द कहते ने अमीर रुपया दे सकता है, मध्यम वर्ग का ढेला दे सकता है, माड़ा कौड़ी दे सकता है। कह लगे सरबत संगत जिन्ना रुपया तेला कौड़ी जो भी खर्च किया गुरु की दरगाह विच पाएगा, सरबत पटने की संगत को गुरु रखेगा। वाहिगुरु किन्निया रहमता पटने दे लोकां लईआं। हजूर अगे चले गए ने, मेरे कलगीधर सच्चे पिता इन्हां दी पालना शुरू हुई है। पटने की संगत ने बड़ी चा नाल पालिया। हजूर कृपालू सतगुरु मामा कृपाल चंद जी गुरु गोबिंद राय जी दी नाल परवरिश विच ने। भाई दयाल दास जी नूं फिर हुक्मनामा आउंदा है ते हजूर पता है फिर की लिखदे ने। गुरु तेग बहादुर जी लिखदे ने सरबत पटने की संगत को, शब्द मैं सिर्फ विचों विचों हुक्मनामिया दे कह रहा, वैसे कहण काफी वड्डे। फिर मैं सोचा भी कहण क्यों तख्तां ते किन्ने किन्ने दिन रोक गए। उसे शब्द की वरत्या हुक्मनामे विच भाई दयाल दास ए जो करेगा जो कहेगा सो गुरु का कहा होया मनना, जो कहेगा बस गुरु की गल कहेगा। मेरे गोबिंद राय उन्हें गलिया शरीरक तौर से वड्डे खून लगे, उन्हें पटने दिया गलिया सुभा के मेरे बाला प्रीतम के निके निके चरण ओदे विच दौड़ते रहे ने। थोड़े जे वड्डे होए ने, अज मेरे बाला प्रीतम के हाथ में गुलेल आ गई। उस तखत की गल कर रहा मैं, सिर्फ संखेप जहा चल रहा। गुलेल पकड़ीए तो पता भी जालम नाल टक्कर लैनी है, लैके उसे भांडे भरने भरने शुरू किए, रौला पै गया। माता ने अनेक तरह के होर गागरा दित्तियां, मेरे बाला प्रीतम ने तीर पकड़ी। अखीर से जड़ी खुई आप अज भी पटना साहब तख्त में दर्शन कर दे उसे चरखड़ी बनी है। इस पट खुई विचों लोग पानी भरन आते सन, तो उस समय जदों कई ने रोस्ट किया तो उस खुई का पानी खारा हो गया। फिर उसे कभी जाके पुछो जेड़े सेवादार कई पुश्तों तो तुरे होंगे, पानी खारा होया तो संगत ने बेनती की मां के गुरु के आगमन वाला स्थान इतने तो मिठास चाहिए। कह लगे चले हैं ज्यों ज्यों संगत आएगी परत के मिठा होगा, 47 तो बाद उस खूह का पानी मिठा हो गया। अज भी कभी तको हजूर ने उस पटने साहब की धरती से बेंत चोज किए, ਇੱਕ ਖੇਡ ਜਿੱਥੇ ਗੁਲੇਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਤੀਰ ਚਲਾਏ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਟਨੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਟਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੇਡਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਿਓ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਦੀ ਨੇੜੇ ਆਈ ਉਹਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਕੜਨ ਲੱਗੇ ਦੌੜ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਸੰਦ ਡਰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਸੀ ਕਾਇਮ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਵਾਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਲੇਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜੋ ਕੀਆ ਸੋ ਭਲਾ ਕੀਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਵਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਇਆ, ਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਜੋ ਕੀਆ ਭਲਾ ਕੀਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਘਰ ਆ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੂੰ ਪਵਾਂਦੀ ਦੇਣੀ ਸਰਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਅਕਾਲ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ ਧੂਰ ਦੇ ਕੈਸੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਕਲਗੀ ਵਾਰੇ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਬੜੇ ਚੋਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਆਪ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੰਗਣ। ਇੱਕ ਕੰਗਣ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਕੰਗਣ ਲਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਕਰਾ ਉਹ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਲਾਲ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਗਣ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਟ ਦਿੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਸੱਟੇ ਜੇ? ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲਾ ਕੇ ਪੁਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸੱਟੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਦੂਜਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਰਾਤੀ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਵੀ ਢਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕੰਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਜਾਣ ਕੇ ਗੰਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੇ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਕੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਸੱਟਿਆ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਸੀ ਵੀ ਸੋਨੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਬ ਲੋਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਘਾਟ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਬਹਿੰਦਾ, ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ। ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰੜਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਜ ਕਰਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੰਚੇਤ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਗਏ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਮ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਇੱਕੋ ਦਾ ਮੋਢਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੌੜ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਕੰਨ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਚਾਤ। ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪੁਜਾਰੀ। ਦੌੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਨੇਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਚਾਰ। ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਅਮਿਓ ਰਸ ਨਾਲ ਪਿੱਜ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੋਨੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ कई दिनों तो तेरे जीवन विच बड़ा वड्डा पलटा आ गया, तेरी रचना ते प्रभु का निवास हो गया, तेरे तो एक मंग मंगना है, दसो। कह लगे घर दात नहीं पुत्र धी की संतान तो सकने हैं, तेरी रचना ते प्रभु बैठा है ते सानू पुत्र की दात मिल जाए, संतान मिल जाए कोई। ते पंडित शरदत्त कहिंदे आ ठाकुर ता इस गलियां विच तुरिया फिरदा है। उन्हें समझिया, कह लगे ठाकुर कर करो बेनती। कह लगे मैं नरजिंद ठाकुर नहीं पूजदा, मैं पत्थरां नूं नहीं पूजदा, मैं देवी देवत्यां नूं पूजदा, हुण ठाकुर मेरा ओ पारा आ गया है जिहड़ा सत बोलंता है, तुहानूं पता ही नहीं लगा कि मैं तां उस ठाकुर दा दास हां। ते कहन लगे ओ ठाकुर केड़ा, ते उस वेले उन्होंने बचन कह कह लगे घर जाके प्रेम नाल चेते करियो ते मेरा ठाकुर तुहाडे घर भी जरूर आएगा, जे मेनू भाग लाए ने तुहाडे घर नहीं आएगा। फतेह चंद मैणी ते राणी दोनों वापस घर आ गए ने, मेरे बाला प्रीतम उत्थे चोज करदे ने। राणी दे अंदर एक प्रेम की कांग एक लिव शुरू हुई है, रोज याद करदी है। ते पंडित ने कहा मेरा बाला प्रीतम ठाकुर जरूर आवेगा। ते देखो असल विच प्रेम दियां खेडां ने उस पटने दियां, पांच साल दे चोज ने जिहड़ा साडा दूजा तख्त है। ते शायद आप नूं पता होवे कि उदू बाद उस धरती ते गुरु दे चरण भी नहीं पाए शरीरक तौर ते। पांच साल की उम्र विच चोज पै करदे ने, हजूर ने पटने की गलियां विच खेडदे ने, राणी का अंदर लिव बन गई, दोनों जी सवेरे शाम गुरु की याद भी जुड़न लगे, बाला प्रीतम की तांग अंदर पैदा हुई। ते भाई साहब लिखते ने, भाई वीर सिंह एक दिन राजा कहिंदा राणी नूं कि आपां पुत्र की वासना करके गुरु नूं चेते ना करिए, क्योंकि ज्यों ज्यों कोई सिमरन करता बाणी विच हर एक बंदे की स्टेज वक्री। कई बार धन मंगी दो दे लई स्टेज यह भी है कि गोपाल तेरा आरता जोजन तुमरी कर भगत करन दे तिनके काश वारता, दाल सीधा मांगू की होवा, जां मान मांगू तान मांगू धन लक्ष्मी सुख दे सुत दे, जां दोए सिर मांगू चूना पाओ घीओ संग लूना। ते जदों अवस्था पुग जाती है ना उदों फिर यह नहीं मंग रही, उदों इको ही शब्द निकलता मैं क्या मांगू कि चिर ना रहाई हर दीजे नाम प्यारी जीओ। पर अंदर की अवस्था है, कह लगे पुत्र की वासना जड़ी है रुकावट इनू हटा देिए। बस उस दिन ही कह दिता पुत्र नहीं चाहिए बाला प्रीतम तू चाहिए, कृपा कर जिंदगी सफल करन दी दात दे दे। अज सवेर तो राणी किसे बैराग में आईए, पंडित शिवदत्त गली विचों लंघे ते इको दम बूहे दे विचों झाती मारी, ते राजा ते राणी दोनों उठ के आए, बैठ के पंडित जी थके सन ते कह लगे किस तरह, कहिंदे हुण बड़ियां रहमतां ने बस बाला प्रीतम चाहिए। हस के कहिंदे जे भावना बनी है जे मेरे वर्गे बुढ़े लकड़ वर्गे शरीर नूं गलवकड़ी पा के बाबा जी पंडित जी झात कहिंदे तुहाडी ते भावना नूं गोद विच बह के पाग ला सकदा, मैनू तो पिछ तो पकड़िया तुहाडी गोद विच बहेगा। इन्नी गल कह के पंडित जी चले गए। अज राणी अमृत वेले तो रात सारी नींद नहीं पई, किसे अगमी रंग विच रंगी है, चौंकड़ा मार दोनों जी बैठे ने, अचनचेत खिदू खूंडी खेडने की आवाज आई है, खड़कती कोई लकड़ जमीन से सुनाई दिती, सोचिया बच्चे गली से खेडते पे ने। राणी मगने ध्यान दे विच ओ खिदू अचनचेत घर के गए, राणी नूं बैठिया देख के बाले प्रीतम ने खूंडी पवा के परा मारी, गोद विच जाके कुट के गलवकड़ी पा के कन कोल कहिंदे ने मां, जदों शब्द किया मां ते रोम रोम खिड़ गया, अंदर रोम रोम रहमत टेकी, मां शब्द मां सुनिया ते ओ औरत जड़ी बच्चे दी सिक लई तड़फदी होवे ओदे कन्नां विच मां शब्द पै जाए ओ किन्नी को आनंदत विच होवेगी। जदों अखां खोल के देखियां ते बाला प्रीतम ने मां नूं गलवकड़ी पाई हुई सी, राणी ने चरणां नूं हत्थ लाण लगी, बाला प्रीतम कहिंदे मां शीश ते प्यार दे पैरां नूं हत्थ नहीं, तू मां है। राजा फतेह चंद आया दौड़ के, हजूर ने मथा रोक दिता, कह लगे तुहानूं पुत्र चाहिए है, अज तो बाद तू मेरी मां ते मैं तेरा पुत्र। वाहिगुरू गुरु इतिहास पढ़दे मैनूं दो गल्लां कई बार सोचना वा कि राणी तू भागां वाली है, तेरी गोद विच बैठ के कलगिया वाला तेनू मां कह के अपना अपने आप नू तेरा पुत्र बना दिता। ते भाई जैसा तू भागण वाला तेनू सीने न ला के कलगी वाले ने तेनू अपना पुत्र बना तेरा बापू बन गया। दो गल्लां कदी ना भुलियो, एक राजा फतेह चंद मैणी दा घर, एक भाई जैसे तेनू पुत्र दी पदवी दित्ती है रंगरेते गुरु के बेटे। ते राणी नू कहा मां, इको दम राणी दे अंदर गुरु की रहमत टेक गई। ते कह लगे भुख लगी है, सारा दिन खेडिया कुछ छकन नू मिलेगा। ते उस वेले राणी बाजार वल तुर लगी, नौकर नू कहने ने मां देख मैं फिर नहीं आना, जो कुछ घर है छका दे। पूड़िया चने तैयार किए, ते इको दम कोल बैठ के राणी पुछ दिए बाला प्रीतम नू कि तुसी पुत्र मैं मां, पर मन विच आउंदा है कि पुत्र एक ते मावां दो किवें होवेगा। बाला प्रीतम हस के कहिंदे ने मां जे अखां दो ने ते जोत एक हो सकती है ते दो मावां ते पुत्र भी एक हो सकता है। कहन लगी दोनां दी गोद विच किवें खेडोगे। कहन लगे सवेरे तुहाडी गोद विच खेडांगा, शाम नूं मां गुजरी दी गोद विच खेडांगा। लाल जी ए किवें, हस के कहिंदे ने जिवें एक चंद्रमा दो झीलां दे विच ते गंगा विच ते झील विच भी खेडदा है, एक चंद्रमा दो दरियावां विच खेडदा है, इसे तरह मैं दो गोदियां विच खेडा। कहिंदे उस दिन सारा दिन बैठे, शाम तक बैठे रहे। अज राजा फतेह चंद मैणी कृपा का पात्र बन गया, हजूर ने नेम बना लिया, रोज आना उत्थे आके प्रसाद पानी छकना। ते गुरमुखो एक मैरज करनी जिहड़ी अज तीकरा मर्यादा है, हजूर जदों राजा फतेह चंद मैणी दे घर जाते सन ते कई वारी एक दो घड़ी रात लंघ जाती सी। ते इधर जिथे तख्त है जिथे आगमन होया, माता गुजरी जी, माता नानकी जी, मामा कृपाल चंद संगत रह रास्ता पार छुरी नहीं सी करदी क्योंकि अजे साहबजादा जी नहीं आए, बाला प्रीतम नहीं आए। घड़ी रात लंघ जानी, बाला प्रीतम ने जाना ते सोदर का पाठ शुरू होना। उस दिन तो लैके अज तक सारे गुरु घरां विच हिंदुस्तान सूरज छिपदिया सोदर शुरू हुंदी है, पर तख्त श्री पटना साहब ते एक घड़ी रात गई रहना शुरू हुंदी क्योंकि बाला प्रीतम दे आउण दा समय ही हो सी। सारा दिन उस मां की गोद विच बैठते सन, अज भी एक घड़ी रात गई, पटना साहब ते सोदर का पाठ शुरू हुंदा है। हजूर ने उस घर नूं भाग लाया। उस तो अगे चलो, अज तकरीबन 5 साल दे हो गए ने, नवाब करीम बख्श ते रहीम बख्श रोज आउंदे ने मेरी सच्ची सरकार दे चरण परसन। 4 सिख कदी ना भुल्यो, पटने दे भाई जैतमल शेठ जैतमल, दूजा फतेह चंद मैणी, तीजा पंडित शिवदत्त, चौथा नवाब रहीम बख्श ते करीम बख्श। अज फिर पुछन लग पए ने मां, दादी नूं पुछना, माता नूं पुछना, पिता जी दे दीदार क्यों नहीं। गुरमुखो 5 साल की उम्र हो गई है, गुरु तेग बहादुर दे अंदर सच्चे पिता जी दा शरीर पंजां तत्तां दी गल करांगे, कदी ना मोह ने उबाला खादा कि अज मेरा लाल 5 सालां दा हो गया, मैं जाके पुत्र नूं देख लवां। नहीं, क्योंकि इस दे घर ओह पुत्र आया है जिन्हें अपने मरे हुए पुत्रां दीआं लाशां नूं वेख के भी खंजू नहीं घेरना। एवें नहीं कह देना इकोदम सच्ची सरकार संबंधी। हजूर गुरु तेग बहादुर जी रोज पुछदे ने मां कि पिता जी दे दर्शन कदों होणगे। सतगुरु असाम दी धरती तो वापस मुड़े ने, अज कदी देखियो एक गुरुद्वारा, उत्थे गुरु का बाग है। मेरे गुरु तेग बहादुर जी उस बाग विच गए ने, ओह बाग कई सालां दा सुक्का सी ते रवायत है, अज भी मैं उहदे आप जी ने कईआं ने दर्शन कीते उहने जदों ते मैं गया कथा कर ते दर्शन करन दा मौका मिलिया, ते उस बाग विच कई सालां दा सुक चुका सी, ते बाग नकीम बख्श ते करीम बख्श दा सी। गुरु तेग बहादुर आ के बैठे, घर सुनेहा पहुंचिया, अज पटने दी संगत साहिबजादे नूं लै के गुरु तेग बहादुर जी दे दर्शनां लई जांदी पई। अज अकाल दा सुत अपने पिता दे दीदार लई चलिया है। कहिंदे ने जदों उत्थे जा के गुरु गोबिंद राय जी उतरे, पैदल तुर के दौड़ के पिता जी कोल गए, ते गुरु तेग बहादुर जी दे चरणा विच 5 साल दे मां ने कहा कि बेटा, पिता दे चरणा विच मत्था टोकी, मत्था टेकिया। पहले दिन साहब ने सीने न लाया, रवायत है कि जिदन पिता ते पुत्र सीने न लगे उदन सुके बाग भी हरे हो गए। उस उस दिन तो अज तक पटने की धरती से जितन बागरा होया रहीम बख्श ने सदा ही ला दिता कि नवाबा का बाग नहीं ये गुरु का बाग है। अज तीकरा उन्हों गुरु का बाग कहा जाता है। वो बागरा होया तो एक उत्थे निम का रुख है तो मनिया जाता है ये कोई दो रावान नहीं कि साहब ने दातन की दातन गड्डी से निम का रुख बन गया। अज भी कई देखो तो जिथे दाते की मेहर हो गुरु का बाग बनिया उत्थे अज तक ये रवायत है कि जिन्हों के घर में बूटे ना लगन वो आके अरदास करन गुरु उन्होंने संसार विच बूटे लाता है ते लोकां जिन्हां नूं संतान मिलदी उह बूटे लाण जांदे ने उत्थे कई बूटे उत्थे पए कोई मिलदे नहीं। सतगुरु उत्थे सिर्फ कुछ दिन ठहरे महीना दो महीने ने किन्ना कु दर्द सी इस धरती दा जालम नाल चक्कर लैण लई कुछ दिन ठहरे ने। कहन लगे असीं मदर देश चले हां मदर दर ते इत्थे मां ना समझियो मदर दर ते मिठी धरती पंजाब की धरती नूं दसम विच मदर देश कहे जिहदी बोली मिठी जिहदा पानी मिठा जिहदी तसीर मिठी जिहदा अन्न मिठा। कहन लगे असीं मदर देश चले हां साहिबजादा जी कहन लगे पिता जी असानू कहन लगे लाल जी असीं सुनिया भेजांगे तुसीं बाद विच आउणा। सतगुरु गुरु कलगी धर जी उतावले ने बाला प्रीतम मैं पंजाब की धरती नूं जाणा है ते रोज दादी मां तो पुछदे ने पंजाब की धरती दीआं गल्लां। साहिब गुरु कलगी धर कृपा करे कदी अकाल तख्त ते गुरमते होए सन कि पंजाब की धरती ना अफगान का हिस्सा बनेगी ना कदी दिल्ली का बनेगी। गुरां दी ते गुरां दी रहेगी खालसे की होमलैंड है। साहिब गुरु कलगी धर पिता पटने की धरती ते संगत अत दाने कर दिए। साहब ने गुरु का चक नानकी चक वसाया जिहड़ा अगे आउणा है तख्त साहब नानकी चक तो सुनिया आ गया कि साहबजादा जी नूं लै के आ जाओ। अज जदों हुक्मनामा जां चिट्ठी पहुंची है पटने साहब की धरती ते जिहड़ा शहर कई सालां दा खुशी भी झूमदा सी अज पूरे दा पूरा शहर बिल्कुल खामोश हो गया। ते कदी तकियो जिहड़े आम खुशक ने उन्हें सिर्फ लिखा भी पटने विच बेबलता की कांग आ गई इन्नी गल कह के अगा तुर गए। जिहड़े रसक बैरागी सन उन्हें फिर प्रसंग लिखे कि पटने की पूरी धरती जितने लोग ने अज मुरझाए ने बेबल ने ते इंज लगता जिवें पटने का दिल कढ के अज किसी ने लै जाए अज पातली पुत्र विचों किसी ने निकल जाना जिंद निकल जानी है। मेरे गुरु गोबिंद राय बाला प्रीतम अज तैयारी तय करते हैं ते उस वेले राजा फतेह चंद मैणी नवाब रकीम बख्श करीम बख्श देखो जिन्हों तख्त उत्ते रहमत मिली ने सारी संगत पटने की इकट्ठी होके आई है। बाला प्रीतम जी माता नानकी को तरले लेंदे ने कि आके तुसी जाओ ना असी सारी जिंदगी तुहाडी सेवा करन दा सुभाग प्राप्त सन हो जाए। कहिंदे नहीं हुक्म है गुरु का जाना जरूर है हुक्म सुन के अगो कोई बोलता नहीं। गोबिंद राय जी की तैयारी हो गई है अज तुरन लगे ने ते देखो पंडित शिवदत्त अज भी सोटी का सहारा लेके आया ते अज गंगा के किनारे बैठा है। आवाज अज भी कन्ना विच पई है पंडित जी चाट पर रो के कहिंदा अज तो बाद किन्ने आवाज मारनी बाला प्रीतम चाह रहा है किन्ने परत के आवाज मारनी है पंडित जी चाट खलोता है डंगोरी पकड़ के कंबदा होया शरीर बाला प्रीतम के चरणों में निसल पै गया। कह लगा महाराज इस पिंजर विचों जिंद कढ के अपने नाल लै जा मैं इस करके अर्ज करनी अगे अर्ज करांगा निकलदी भी इस पिंजर विचों जिंद कढ के लै जा तेरे तो बिना नहीं वो पटना चंगा लगा। हस के प्यार नाल फिर गलवकड़ी पा लेंदे ने पांच साल की उम्र कुछ चढ़ के कहिंदे ने पंडित जी देखो तुसी फुरना बनाया कभी आवाज नहीं होनी जिन्नी देर तक तुसी रहोगे तुसी भावना नाल बैठो मैं रोज तुहाडे कन्नां विच आवाज भी दियांगा ते गलवकड़ी भी पाऊंगा। देखो एक भावना सी तुसी बैठो ध्यान विच मेरे दीदार दी रहमत मिलेगी गुरु दी रहमत मिलेगी। पंडित शिवदत्त ने भरोसा कर लिया। नवाब करीम बख्श ते रहीम बख्श आए कहन लगे की खता हो गई साईं। हस के कहन लगे जब जी एकाग्रता नाल पढ़िया जे सुरत नाल पढ़ियो मैं तुहाडे कोल होवांगा। जैतमल आया भगती विच रसिया सी हजूर के चरणा में जुड़ के कहिंदा महाराज मेर कहन लगे भावना नाल दीवान विच आवीं गुरु दीवान विच वरतदा हुंदा है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਕੋਲ ਆਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕੋਲ ਆਈ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਗਸ਼ੀ ਪਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗੀ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਦੇਖ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਸੁਈਆਂ ਲੱਗਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਛੋਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਪ ਘਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਕੋਈ ਨੀ, ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨੀ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਨੀ ਲੈਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੰਜ ਪਦ ਪੁੱਛਣਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਪਰ ਮਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਰੁੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਰੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਰੁੱਖ ਤੇ ਕਦੀ ਸੋਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਤਨੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਸੁੱਕ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੋਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਨਾ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਝੜਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਦੀ ਲੋਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾ ਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਸੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼, ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਪੰਘੂੜਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪੰਘੂੜਾ ਝੂਟਦੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਖੜਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜੋੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਮਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਸਾਂਭੀ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਨ ਪਿਆਰੇ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਾਤਿਆ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੇਤ ਦਿੱਤੇ, ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੂੰ ਪਾਈ ਇਹ ਮੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਣੋਗੇ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੇਤ ਤੇਗਨ ਦਿਉ ਨਾ ਵਿਦਾਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ। ਪਟਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਦਾਨਾਪੁਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਂਡੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਦਾਨਾਪੁਰ ਤੱਕ ਪਟਨੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੁਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਹਿਜ ਜੇਠਮਲ ਸ਼ੇਰ ਜੈਠਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕਣਾ, ਆ ਲਓ ਚਾਬੀਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਖ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਨਾਪੁਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਣੀ ਹਾਂ, ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਆ ਕੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਣੀ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਗਰੀਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਗਰੀਬ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਪਟਨੇ ਦੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਮਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੱਸ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੰਗਰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਸ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਖਿਚੜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖਿਚੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਖਿਚੜੀ ਵਰਤਾਈ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆਏ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਖ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਧਰਨੇ ਆ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਕਮਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਰੇ ਸਨ, ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣਾ, ਉਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸੰਗਤ ਮੈਣੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੰਗਾ ਦਾ ਘਾਟ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਤੇ ਰਾਣੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ, ਚੱਲੇ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਨੇਮ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਛਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਨ ਪਾਲਣਾ। ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਰਾਣੀ ਸਮੇਤ ਤੁਰੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ आनंदपुर साहब की धरती से गया फतेह चंद। फतेह चंद की गल सुन के जो वाहगुरु जाना तो पंडित शिवदत्त पिछों दौड़ के अपने कुछ साथियों कहना मैं पहुंचाओ पहुंचाया पहले पड़ाव से जा कहता फतेह चंदा मेरे दिल दे मेहरमान की होया मेरे तन का जोर मेनु जवाब दे गया पर मेरा अंदर का ने नहीं जवाब दिता अंदर मेरा उस तरह मेनु बाला प्रीतम दे एक बारी दर्शन करा दे पटने की धरती करके सजदा कहिंदा है तेरे ते मेरे बाला प्रीतम आए हुण जिथे मैं चलिया मैं परत के धरती से नहीं होना मैं सदा भी ओदी गोद विच रह जाना है। पंडित शिवदत्त नूं लै गए सफर तय कर दिया ये परिवार रोपड़ मेरे पहुंचया मेरे बाला प्रीतम हुण कलगी वाले हो गए आनंदपुर साहब की धरती तो घोड़े से चढ़ के आए ने अदब नाल मर्यादा पुरशोत्तम जिन्हू मां कहा उन्हू अगे लैन आए ने फतेह चंद मैणी ते राणी पिछे सुन अगे अगे पंडित शिवदत्त दी पालकी है ते कल्ले तुरिया आउंदिया घोड़ा पालकी ना ला के पर्दा चुके कहिंदे ने पंडित जी चाहत बस इको दम रोम रोम पंडित जी का खिड़ गया देखिया मेरा बाला प्रीतम कलगिया वाला बन गया। फिर पंडित जी झात गया पालकी विचों बाहर निकलिया मेरे साहब ने इको दम बोझ के कुट के सीने न ला लिया गुरु के सिखा देख हड्डिया की मुठी पर अंदर वाला ने नहीं ते वेख के बड़े नीत नाल चेहरे नूं ताके हाथ ला के कहिंदा हुण बाला प्रीतम नहीं कलगी वाले साहब ने कहा नहीं जिन्नी देर तक तुसी मेरे को रहना मैनूं बाला प्रीतम ही कहना कलगी वाला नहीं तुसी कहना मैं तुहाडे लई बाला प्रीतम ही हाँ। दौड़ के गए मां नूं मिले दोनों पति ते पत्नी फतेह चंद मैणी ते राणी मस्तक टेक लगे साहब ने कहा नहीं मां बस एक वारी सीने नाल ला के प्यार दे दे तू मां है मैं तेरा पुत्र। आनंदपुर साहब रहे खेड़े विच रहे अज मेरे साहब का पुरब आ गया पोह का महीना सप्तमी आई पुरब आया सारी संगत नवाजी गई अज जदों पटने की संगत वापस तुर लगी ते कलगी वाले ने एक गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप आप दस्तखत करके दिता ते नाल किया अज तो बाद गुरु ग्रंथ साहब की सेवा करनी बाणी पढ़ियो मेरे दर्शने दे विचों होणगे फतेह चंद मैणी नूं दित्ती ते जदों कहिंदे ने पंडित शिवदत्त जी कोल बैठे सन हजूर ने उन्हां ने कुछ नहीं किया राधा फतेह चंद कहिंदे ने पंडित जी उच्ची सुणदे सन चलिए वापस पटने की धरती ते कहन लगे मैं मत्था टेक आया हुण मैं अपने बाला प्रीतम की गोद विच सदा लई बैठ जा। देखो कल भी एक अर्ज की थी सी गुरुकुल दो तरह के लोग आते ने एक मत्था टेकते ने ते कहिंदे गद्दी मिल जाए एक मत्था टेक के कहिंदे गद्दी नहीं मैनूं गोदी मिल जाए फर्क है एक गद्दी वल भजदे पए ने ते दूसरे गुरुकुल बह के कहिंदे ने गद्दियां नहीं पदवियां नहीं अपनी गोदी दे दे गद्दी वाला रुल जांदा है गोदी वाला कदी गोदी छड नहीं दे सकदा गोदी वाला अमर हो जांदा है। साहिब दे चरणां विच पंडित शिवदत्त ने अपने वल्लों कहा दाता बाला प्रीतम मैं वापस नहीं जाना ते हजूर दे ना चरणा विच मत्था टेकन लगा साहब ने बोझ के सीस उन्हां दा अपनी झोली विच लिया ते झोली विच पंडित शिवदत्त ने आखरी सवास दिता सी ते आनंदपुर साहब भी दिता। उस तो बाद पटने आए ते उस वेले जदों मुगलां दा राज सी संगत का कुछ कु राबदा पटने की संगत का सिख संगत न बनिया रहा माता सुंदरी जी वेले भी इस संगत जुड़ी रही जंगा जुद्धा वेले भी जुड़े रहे समा लंघिया वो स्थान से संगत आउंदी रही कुछ कु जमीना लोगों ने ना लवाइया 1834 के करीब शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह देखो भूचाल आया से उत्थे ते जेड़ी इमारत बनी वह गिरी शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने उस तख्त श्री पटना साहब की सेवा राही ज्ञानी गुरमुख सिंह दे कराई उसके हुक्मनामे की लिखत भी मिलती महाराजा रणजीत सिंह ने 1834 तो लैके 39 के करीब अपने अंतले दिनों विच पटना साहब दे सेवा कराई उस वेले जिहड़ी इमारत बनी महंत जिहड़े ने सेवा करते रहे गुरमुखो कई महंतां दे नाम विच आए ने इत्थों दे इक प्रमुख महंत होए ने बाबा सुमेर सिंह जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ। ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਉਸ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੀ। ਬਾਬਾ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਧੌਰ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਸਰਬਰਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਲੰਘੀ। ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਨਰੈਣੂ ਮਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੰਨ 1934 ਆਇਆ, ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਨ 1934 ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ 40,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ 25,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨੇਚਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੱਤੇ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲੇ ਕਪੂਰਸਲਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮਹੰਤੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਨਾਤਨ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਤਖ਼ਤ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। 84 ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੱਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਬਿਰਦ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਨੇ ਉਸ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਨਾਲ ਟਿਕ ਟੁਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਰਤੀ ਵੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰੀਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਦਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਆਮਦ ਹੋਈ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਤਖ਼ਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਹਿਬ ਮੇਰ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਸ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੀਸਰਾ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।